परमेश्वर का नियम .org अपेंडिक्स 2 मसीही और खतना। खतना एक आज्ञा जिसे लगभग सभी चर्च समाप्त मानते हैं। ईश्वर की सभी पवित्र आज्ञाओं में खतना एकमात्र ऐसी आज्ञा प्रतीत होती है जिसे लगभग सभी चर्च गलत तरीके से समाप्त मानते हैं। यह धारणा इतनी व्यापक है कि पूर्व में प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले गुट जैसे कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, असेंबली ऑफ गॉड, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट आदि के साथ साथ वे समूह जिन्हें अक्सर पंथ कहा जाता है जैसे मॉर्मन और यहोवा के साक्षी सभी दावा करते हैं कि यह आज्ञा क्रूस पर समाप्त कर दी गई थी। यीशु ने इसकी समाप्ति की शिक्षा कभी नहीं दी। ये विश्वास ईसाइयों के बीच इतना प्रचलित है इसके बावजूद कि यीशु ने कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। यीशु के सभी प्रेरित और शिष्य, जिनमें पौलुस भी शामिल है, जिनके लेखन का अक्सर उपयोग यह सिद्ध करने के लिए किया जाता है कि यह आज्ञा अब अनिवार्य नहीं है, इस आज्ञा का पालन करते थे। यह तब भी किया जाता है जबकि पुराने नियम में ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है जो ये सुझाए कि मसीहा के आगमन के बाद ईश्वर के लोग, चाहे यहूदी हों या जाति के, इस आज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में अब्राहम के समय से किसी भी पुरुष के लिए यह आवश्यक था कि वह इस आज्ञा का पालन करे ताकि वह ईश्वर के अलग किए गए लोगों का हिस्सा बन सके, चाहे वह अब्राहम का वंशज हो या नहीं। खतना एक शाश्वत वाचा का चिन्ह। पवित्र समुदाय जो अन्य राष्ट्रों से अलग किया गया था का हिस्सा बनने के लिए किसी को खतना कराना अनिवार्य था। खतना ईश्वर और उनके विशेष लोगों के बीच वाचा का शारीरिक चिन्ह था। इसके अलावा ये वाचा केवल अब्राहम के जैविक वंशजों तक सीमित नहीं थी। इसमें वे सभी विदेशी शामिल थे जो आधिकारिक रूप से समुदाय का हिस्सा बनना चाहते थे और ईश्वर के सामने समान दर्जा प्राप्त करना चाहते थे। प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा, यह केवल तुम्हारे घर में जन्मे लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा खरीदे गए विदेशी सेवकों के लिए भी सच है। चाहे वे तुम्हारे घर में जन्मे हों या तुम्हारे धन से खरीदे गए हों, उन्हें खतना कराना होगा। तुम्हारे शरीर में यह मेरी वाचा का शाश्वत चिन्ह होगा। उत्पत्ति 17:12-13। यदि जातियों को ईश्वर के अलग किए गए लोगों का हिस्सा बनने के लिए इस शारीरिक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती, तो मसीहा के आने से पहले ईश्वर ने खतना की आवश्यकता क्यों रखी और बाद में इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया? इस तरह के विचार के लिए भविष्यवाणियों में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए थी और यीशु को यह बताना चाहिए था कि उनके स्वर्गारोहण के बाद यह बदलाव होगा। हालांकि पुराने नियम में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि जातियों को ईश्वर के लोगों में शामिल किया जाएगा और उन्हें किसी भी आज्ञा, विशेष रूप से खतना का पालन न करने की अनुमति दी जाएगी, केवल इसलिए कि वे अब्राहम के जैविक वंशज नहीं हैं। इस आज्ञा का पालन न करने के दो सामान्य कारण। पहला कारण, चर्च गलत तरीके से सिखाते हैं कि खतना समाप्त कर दिया गया है। चर्च ये सिखाते हैं कि खतना की आज्ञा अब मान्य नहीं है, लेकिन ये कभी स्पष्ट नहीं करते कि इसे किसने समाप्त किया। इसका मुख्य कारण इस आज्ञा का पालन करने में होने वाली कठिनाई है। चर्च के नेता डरते हैं कि यदि वे इस सत्य को स्वीकारते और सिखाते कि ईश्वर ने इसे समाप्त करने का कोई निर्देश नहीं दिया, तो वे अपने कई अनुयायियों को खो देंगे। सामान्य रूप से ये आज्ञा पालन करने में असुविधाजनक रही है और अब भी है। चिकित्सा प्रगति के बावजूद एक मसीही जो इस आज्ञा का पालन करने का निर्णय करता है, उसे एक पेशेवर चिकित्सक खोजना होगा, जेब से खर्च करना होगा, क्योंकि अधिकांश स्वास्थ्य बीमा इसे कवर नहीं करते, प्रक्रिया को सहन करना होगा और सामाजिक कलंक का सामना करना होगा। इसके अतिरिक्त उसे परिवार, दोस्तों और चर्च से अक्सर विरोध झेलना पड़ता है। व्यक्तिगत अनुभव, एक पुरुष को इस आज्ञा का पालन करने के लिए सच में दृढ़ निश्चय करना होता है, अन्यथा वह आसानी से इसे छोड़ सकता है। इस मार्ग से भटकने के लिए बहुत प्रोत्साहन उपलब्ध है। मैं ये जानता हूं क्योंकि मैंने स्वयं 63 वर्ष की आयु में इस आज्ञा के पालन में खतना कराया। दूसरा कारण, दिव्य अधिकार या प्राधिकरण की गलतफहमी। दूसरा कारण और निसंदेह मुख्य कारण यह कि चर्च ईश्वर के दिव्य अधिकार या प्राधिकरण को सही से समझने में विफल है। इस गलतफहमी का प्रारंभिक लाभ शैतान ने उठाया। जब यीशु के स्वर्गारोहण के कुछ दशकों बाद ही चर्च के नेताओं के बीच सत्ता के लिए विवाद शुरू हो गए, इसका परिणाम यह हुआ कि चर्च इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि ईश्वर ने पतरस और उनके तथाकथित उत्तराधिकारियों को यह अधिकार सौंपा कि वे ईश्वर की व्यवस्था में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। इस विचलन ने खतना से परे जाकर पुराने नियम की कई अन्य आज्ञाओं को भी प्रभावित किया, जिनका यीशु और उनके अनुयायी सदा निष्ठा से पालन करते थे। ईश्वर की व्यवस्था पर अधिकार शैतान द्वारा प्रेरित चर्च इस तथ्य की अनदेखी कर बैठा कि ईश्वर की पवित्र व्यवस्था पर कोई भी अधिकार केवल ईश्वर से ही आ सकता था, या तो उनके पुराने नियम के नबियों के माध्यम से या उनके मसीहा के द्वारा। यह सोचना भी असंभव है कि साधारण मनुष्य स्वयं को इतना अधिकार दे सकते हैं कि वे ईश्वर की व्यवस्था जैसी कीमती चीज को बदल दें। न तो ईश्वर के किसी नबी ने और न ही स्वयं यीशु ने हमें यह चेतावनी दी कि पिता मसीहा के बाद किसी समूह या व्यक्ति को उनकी आज्ञाओं को रद्द करने, बदलने, संशोधित करने या अद्यतन करने की शक्ति या प्रेरणा देंगे। इसके विपरीत प्रभु ने स्पष्ट रूप से इसे एक गंभीर पाप कहा, जो कुछ मैं तुम्हें आदेश देता हूं उसमें न तो कुछ जोड़ो और न ही कुछ घटाओ, बल्कि मैं जो आज्ञाएं तुम्हें देता हूं उनका पालन करो। 4:2 ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध का ह्रास। एक अन्य गंभीर समस्या यह है कि ईश्वर और प्राणी के बीच के व्यक्तिगत संबंध की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। चर्च को कभी भी ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए नहीं बनाया गया था। फिर भी ईसाई युग की शुरुआत में ही चर्च ने इस भूमिका को अपना लिया। इसके बजाय कि प्रत्येक विश्वास करने वाला पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में पिता और पुत्र के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करे, लोग पूरी तरह से अपने नेताओं पर निर्भर हो गए कि वे उन्हें बताएं कि प्रभु क्या अनुमति देते हैं और क्या निषेध करते हैं। शास्त्रों तक सीमित पहुंच। यह समस्या मुख्य रूप से इसलिए हुई क्योंकि 16वीं सदी के सुधार आंदोलन से पहले शास्त्रों तक पहुंच केवल धर्मगुरुओं तक सीमित थी। यह स्पष्ट रूप से आम व्यक्ति के लिए बाइबल पढ़ने की मनाही थी, ये कहते हुए कि वह इसे धर्मगुरुओं की व्याख्या के बिना समझने में असमर्थ होगा। 5 सदियां बीत चुकी हैं और शास्त्रों तक सार्वभौमिक पहुंच होने के बावजूद लोग आज भी पूरी तरह से अपने नेताओं के शिक्षण पर निर्भर रहते हैं, चाहे वह शिक्षण सही हो या गलत। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुराने सुधार आंदोलन से पहले जो गलत शिक्षाएं ईश्वर की पवित्र और शाश्वत आज्ञाओं के बारे में प्रचारित होती थीं, वे अब भी हर संप्रदाय के धर्मशास्त्र स्कूलों के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही हैं। यीशु की शिक्षा और ईश्वर की व्यवस्था। जितना मैं जानता हूं, ऐसा कोई ईसाई संस्थान नहीं है जो अपने भावी नेताओं को स्पष्ट रूप से यीशु की वह शिक्षा सिखाता हो, जिसमें कहा गया है कि मसीहा के आगमन के बाद भी ईश्वर की किसी भी आज्ञा की वैधता समाप्त नहीं हुई। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे तब तक व्यवस्था का न तो एक छोटा सा अक्षर न ही एक बिंदी समाप्त होगी जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। इसलिए जो कोई इन सबसे छोटी आज्ञाओं में से एक को भी रद्द करता है और दूसरों को ऐसा सिखाता है, उसे स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहा जाएगा, लेकिन जो कोई इनका पालन करता और सिखाता है वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मत्ती 5:18-19। कुछ संप्रदायों में आंशिक आज्ञाकारिता। कुछ संप्रदाय ये सिखाने का प्रयास करते हैं कि प्रभु की आज्ञाएं अनंत काल तक मान्य हैं, और मसीहा के बाद किसी भी बाइबल लेखक ने इस समझ का विरोध नहीं किया, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वे मान्य आज्ञाओं की सूची को उन तक सीमित कर देते हैं जिन्हें अन्य चर्च समाप्त घोषित कर चुके हैं। ये संप्रदाय 10 आज्ञाओं, जिसमें 4थी आज्ञा के 7वें दिन का सप्त शामिल है और लेविटीज 11 के खाद्य नियमों पर बल देते हैं, लेकिन उससे ऑगस्टीन ग्रोर्ड। सबसे अजीब बात यह है कि इन आज्ञाओं के इस विशेष ज्ञान के लिए पुराने नियम या 4 सुषमाचारों पर आधारित कोई स्पष्ट औचित्य नहीं दिया जाता। ये भी स्पष्ट नहीं किया जाता कि क्यों इन आज्ञाओं को अनिवार्य माना जाता है, जबकि अन्य जैसे बाल और दाढ़ी, जित या खतना को नज़रअंदाज किया जाता है या बचाव नहीं किया जाता। यह सवाल उठता है, यदि प्रभु की सभी आज्ञाएं पवित्र और न्यायपूर्ण हैं तो कुछ का पालन क्यों किया जाए और सभी का क्यों नहीं? शाश्वत वाचा। खतना ईश्वर और उनके लोगों के बीच की शाश्वत वाचा है। यह वाचा एक ऐसे समूह का निर्माण करती है जो शेष जनसंख्या से अलग और पवित्र है। यह समूह हमेशा सभी के लिए खुला रहा है और इसे केवल अब्राहम के जैविक वंशजों तक सीमित नहीं किया गया था, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। जब से ईश्वर ने अब्राहम को इस समूह का पहला सदस्य बनाया, तब से खतना को वाचा का दृश्यमान और शाश्वत चिन्ह बनाया गया। ये स्पष्ट कर दिया गया कि उनके प्राकृतिक वंशज और वे जो उनकी वंशावली से नहीं हैं, यदि वे इस पवित्र समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उन्हें इस शारीरिक चिन्ह को धारण करना होगा। प्रेरित पौलुस के लेखन, ईश्वर की शाश्वत व्यवस्थाओं का पालन न करने के लिए एक तर्क। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उभरे विभिन्न लेखनों को संगठित करने के शुरुआती प्रयासों में से एक मार्शियन 85 से 160 के बीच एक धनी जहाज मालिक ने किया। मार्शियन पौलुस के एक उत्साही अनुयायी थे, लेकिन यहूदियों से घृणा करते थे। उनकी बाइबल मुख्यतः पौलुस के लेखनों और उनके स्वयं के सुसमाचार से बनी थी, जिसे कई लोग लूका के सुसमाचार की एक नकल मानते हैं। मार्शियन ने अन्य सभी सुसमाचारों और पत्रियों को अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि वे ईश्वर से प्रेरित नहीं थे। उनकी बाइबल में पुराने नियम के सभी संदर्भ हटा दिए गए, क्योंकि उनका मानना था कि यीशु से पहले का ईश्वर वही नहीं था जिसे पौलुस ने प्रचारित किया। हालांकि रोम के चर्च ने मार्शियन की बाइबल को खारिज कर दिया और उन्हें विधर्मी घोषित किया, लेकिन पौलुस के लेखनों को ईश्वर से प्रेरित मानने और पुराने नियम के साथ साथ मत्ती, मरकुस और यूहन्ना के सुसमाचारों को अस्वीकार करने के उनके विचार ने प्रारंभिक ईसाइयों की मान्यताओं को प्रभावित किया। नए नियम के कैनन का विकास। नए नियम का पहला आधिकारिक कैनन 4वीं सदी के अंत में यीशु के पिता के पास लौटने के लगभग 350 वर्षों बाद मान्यता प्राप्त हुआ। रोम, हिप्पो 393 और कार्थेज 397 में कैथोलिक चर्च की परिषदों ने आज के नए नियम के 27 पुस्तकों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन परिषदों ने ईसाई समुदायों में प्रचलित विविध व्याख्याओं और ग्रंथों को संबोधित करने के लिए कैनन को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पौलुस के पत्रों की स्वीकृति और समावेश। पौलुस के पत्रों को 4वीं सदी में रोम द्वारा स्वीकृत लेखनों के संग्रह में शामिल किया गया। कैथोलिक चर्च द्वारा पवित्र माने गए इस संग्रह को लैटिन में बिब्लिया साक्रा और ग्रीक में ता बिब्लिया ता हागिया कहा गया। कई सदियों तक ये बहस चलने के बाद कि कौन कौन से लेखन आधिकारिक कैनन का हिस्सा बनने चाहिए, चर्च के बिशपों ने इन ग्रंथों को पवित्र और मान्य घोषित किया। यहूदी पुराना नियम, 4 सुसमाचार, लूका द्वारा लिखित प्रेरितों के काम, चर्चों को लिखी गई पत्रियां जिसमें पौलुस के पत्र शामिल हैं, यूहन्ना द्वारा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। ये उल्लेखनीय है कि यीशु के समय में सभी यहूदी स्वयं यीशु सहित अपने शिक्षण में विशेष रूप से पुराने नियम का उपयोग और संदर्भ देते थे। यह प्रथा मुख्यतः उस ग्रीक संस्करण पर आधारित थी जिसे सेप्टुआजेंट कहा जाता है और जिसे मसीह के जन्म से लगभग 3 सदी पहले संकलित किया गया था। पौलुस के लेखनों की व्याख्या की चुनौती। पौलुस के लेखन, जैसे कि यीशु के बाद के अन्य लेखकों के, चर्च द्वारा कई सदियों पहले स्वीकृत आधिकारिक बाइबल में शामिल किए गए थे और इसलिए इन्हें ईसाई विश्वास की नींव माना जाता है। हालांकि समस्या पौलुस के लेखनों में नहीं है, बल्कि उनकी व्याख्याओं में है। उनकी चिट्ठियां एक जटिल और कठिन शैली में लिखी गई थीं। ये चुनौती उनके समय में ही पहचानी गई थी, जैसा कि 2 पत्रस 3:16 में उल्लेख किया गया है, जब उनके पाठकों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ ज्ञात थे। सदियों बाद एक पूरी तरह से अलग संदर्भ में इन ग्रंथों की व्याख्या करना और अधिक कठिन हो गया। अधिकार और व्याख्या का प्रश्न। मुद्दा पौलुस के लेखनों की प्रासंगिकता का नहीं है, बल्कि अधिकार और उसके स्थानांतरण के सिद्धांत का है। जैसा कि पहले समझाया गया है, चर्च द्वारा पौलुस को अश्वर की पवित्र और शाश्वत आज्ञाओं को रद्द करने, संशोधित करने, सुधारने या अद्यतन करने का जो अधिकार दिया गया है वह पूर्ववर्ती शास्त्रों से समर्थित नहीं है, इसलिए ये अधिकार प्रभु से नहीं आता। पुराने नियम या सुसमाचारों में कहीं भी ये भविष्यवाणी नहीं की गई है कि मसीहा के बाद अश्वर एक तर्सुस के व्यक्ति को भेजेंगे जिसकी बातों को सबको सुनना और मानना चाहिए। व्याख्याओं का पुराने नियम और सुसमाचारों के साथ संरेखण। इसका अर्थ है कि पौलुस के लेखनों की कोई भी व्याख्या गलत है यदि वह उनके पहले के प्रकटीकरणों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए एक ऐसा ईसाई जो वास्तव में ईश्वर और उनके वचन से डरता है, उसे उन व्याख्याओं को अस्वीकार करना चाहिए जो पत्रियों की, चाहे वह पौलुस की हों या किसी अन्य लेखक की, उन प्रकट सत्य के साथ संगत नहीं है जो प्रभु ने अपने पुराने नियम के नबियों और अपने मसीहा यीशु के माध्यम से प्रकट किए। ईसाई को बुद्धिमत्ता और विनम्रता के साथ ये कहना चाहिए, मैं इस वचन को नहीं समझता और जो व्याख्या मैंने पढ़ी हैं Verily Herzer Tonch Unmir Prohudi Remugong through Yoshu the Zwaterhouse Summary Shore Berbro Boke Jusheva Satayarin. Masek Tarapuki Stower, you know, be seen then, was when healing. Jafronki Mathikshur, Ek Mahan Pariksha. Yeun Subse Mahatopurna Parikshao Mese Ek Hosakti hai, Jinhe Prabhune, Jation per Topne Kelia Chunahe. Ye Pariksha us Pariksha ke Saman hai, Jiska Samna Yahudi Logone Kanan ki Yatra ke Doran kiata. जैसा कि व्यवस्था विवरण 8:2 में कहा गया है याद करो कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें इन 40 वर्षों में जंगल में कैसे चलाया तुम्हें नम्र करने और परखने के लिए ये जानने के लिए कि तुम्हारे हृदय में क्या है और क्या तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं इस संदर्भ में प्रभु ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से जाति के लोग वास्तव में उनके पवित्र लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हैं ये वे लोग हैं जो खतना सहित सभी आज्ञाओं का पालन करने का निर्णय लेते हैं भले ही उन्हें चर्च से तीव्र दबाव का सामना करना पड़े और चर्चों को लिखे पत्रों के कई अंश ये सुझाव देते हों कि भविष्यवक्ताओं और सुसमाचारों में शाश्वत मानी गई कई आज्ञाएं अब जातियों के लिए रद्द कर दी गई हैं एक खतना शारीरिक और आध्यात्मिक यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि खतने के दो प्रकार नहीं हैं बल्कि केवल एक है शारीरिक ये सभी के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि हृदय का खत पूरी बाइबल में केवल एक रूपक है जैसे टूटा हुआ दिल या आनंदित हृदय जब बाइबल कहती है कि कोई व्यक्ति हृदय में खतना रहित है तो इसका केवल यह अर्थ है कि वह व्यक्ति वैसे नहीं जी रहा है जैसा उसे जीना चाहिए यानी वह जो वास्तव में ईश्वर से प्रेम करता है और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार है दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति शारीरिक रूप से खतना करवा चुका हो सकता है लेकिन उसका जीवन अश्वर के लोगों से अपेक्षित जीवन शैली के अनुरूप नहीं है यिर्मयाह नबी के माध्यम से अश्वर ने घोषित किया कि पूरा इसराइल हृदय में खतना रहित स्थिति में था क्योंकि सभी जातियां खतना रहित हैं और इसराइल का पूरा घराना हृदय में खतना रहित है यिर्मयाह 9:26 स्पष्ट है कि वे सभी शारीरिक रूप से खतना किए गए थे लेकिन अश्वर से दूर हो जाने और उनकी पवित्र व्यवस्था को त्याग देने के कारण उन्हें हृदय में खतना रहित के रूप में न्याय किया गया शारीरिक और हृदय का खतना आवश्यक है अश्वर के सभी पुरुष बच्चों को चाहे यहूदी हों या जाति के शारीरिक और हृदय दोनों प्रकार से खतना कराना होगा यह स्पष्ट कथन में प्रकट होता है प्रभु यहोवा यूं कहता है कोई भी विदेशी जिसमें वे भी शामिल है जो इसराइल के लोगों के बीच रहते हैं मेरे पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि वे शरीर और हृदय दोनों में खतना न कराएं यहेजकेल 44:9 महत्वपूर्ण निष्कर्ष एक हृदय के खतने की अवधारणा हमेशा से अस्तित्व में रही है और इसे नए नियम में शारीरिक खतने के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया दो जो लोग ईश्वर के लोगों का हिस्सा बनना चाहते हैं चाहे वे यहूदी हों या जाति के उन्हें खतना कराना आवश्यक है खतना और जल बपतिस्मा कुछ लोग गलत तरीके से मानते हैं कि जल बपतिस्मा ईसाइयों के लिए खतने का विकल्प है हालांकि ये दावा पूरी तरह मानव निर्मित है और प्रभु की आज्ञा के पालन से बचने का प्रयास है यदि यह दावा सत्य होता तो हमें भविष्यवक्ताओं या सुसमाचारों में ऐसे अंश मिलते जो ये संकेत देते कि मसीहा के स्वर्गारोहण के बाद ईश्वर अब खतने की आवश्यकता नहीं रखेंगे और इसके स्थान पर बपतिस्मा को अपनाया जाएगा लेकिन ऐसा कोई अंश अस्तित्व में नहीं है यहूदी परंपराओं में बपतिस्मा मिक्वे यह जानना महत्वपूर्ण है कि जल बपतिस्मा ईसाई धर्म से पहले का है योहन बपतिस्मा देने वाले ने इसे आविष्कार नहीं किया और न ही वे इसके अग्रणी थे बपतिस्मा या मिक्वे यहूदियों के बीच योहन बपतिस्मा देने वाले के समय से बहुत पहले से एक स्थापित शुद्धिकरण अनुष्ठान था मिक्वे पाप और शारीरिक अशुद्धता से शुद्धिकरण का प्रतीक था जब कोई जाति का व्यक्ति खतना कराता था तो वह भी मिक्वे से गुजरता था यह अनुष्ठान न केवल शुद्धिकरण के लिए था बल्कि यह उनके पुराने पापमय जीवन की मृत्यु का प्रतीक भी था पानी से बाहर निकलना गर्भ के अमनियोटिक द्रव के समान यहूदियों के रूप में एक नए जीवन में उनके पुनर्जन्म का प्रतीक था योहन बपतिस्मा देने वाले और मिक्वे योहन बपतिस्मा देने वाले ने कोई नया अनुष्ठान नहीं बनाया बल्कि एक मौजूदा अनुष्ठान को एक नया अर्थ दिया जहां पहले केवल जातियों को अपने पुराने जीवन मरने और यहूदी के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए बुलाया जाता था वहीं योहन ने पाप में जी रहे यहूदियों को भी मरने और पुनर्जन्म लेने के लिए बुलाया, इसे पश्चाताप का कार्य बताया। हालांकि ये जल में डुबकी लगाना, बपतिस्मा लेना आवश्यक रूप से एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं था। यहूदी खुद को शारीरिक अशुद्धता से शुद्ध करने के लिए जल में डुबकी लगाते थे, जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले। वे आमतौर पर और आज भी यौम के पूर्व पर पश्चाताप के एक कार्य के रूप में ये शुद्धिकरण करते हैं। बपतिस्मा और खतना में अंतर करना। ये विचार कि बपतिस्मा ने खतना का स्थान ले लिया न तो शास्त्रों द्वारा समर्थित है और न ही यहूदी प्रथाओं द्वारा, जबकि बपतिस्मा मिकवे पश्चाताप और शुद्धिकरण का एक सार्थक प्रतीक था और है। इसे कभी भी खतना, जो ईश्वर की वाचा का शाश्वत चिन्ह है, का स्थान लेने के लिए अभिप्रेत नहीं किया गया था। दोनों अनुष्ठानों के अपने अलग उद्देश्य और महत्व हैं और इनमें से कोई भी दूसरे को नकारता नहीं है। यह श्रृंखला और ईश्वर की व्यवस्था पर कई अन्य अध्ययन इस वेबसाइट पर पाए जा सकते हैं, परमेश्वर का नियम .org।